यह सपनों का शहर हो सकता था। चंदन पांडे। उत्तर भारत और खासकर दिल्ली का अनुभव लेकर आए एक नौजवान को बेंगलुरु अपने स्वभाव से अचंभे में डाल देता है। विनम्रता इस शहर का मूल राशि नाम होना चाहिए। कोई ताज्जुब नहीं कि राहुल द्रविड़ इसी शहर से हैं और केवल इसी शहर से हो सकते थे। बस कंडक्टर, ऑटो रिक्शा वाला और हद यह कि पुलिस वाला भी आपको जब सर कहकर संबोधित करता है तब आप शुरू में चौंकते हो, मन में ख्याल आता है कि ये कहाँ आ गए हम, और फिर आप भी उसी लहजे में जवाब देने लगते हो। आप बेंगलुरु में सीखते हो कि तहजीब पर किसी ओहदे का अधिकार नहीं। इन द सिटी ऑफ सिल्विया नाम की एक फिल्म है। इसके नायक की तरह इंजीनियर, मैनेजर, वैज्ञानिक, आईटी सेक्टर और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हर भारतीय का सपना बेंगलुरु आने का होता है। लेकिन मेरे ख्याल में अकेलेपन का कोई पहला शहर इस भारतीय सरजमी पर बनता नजर आएगा तो वह बेंगलुरु ही होगा। मौसम और नौकरी अकेलेपन को आपकी आदत बना देती है। ज़रूरत भर के संग साथ के बाद आप खुद ही एकांत ढूंढने लगते हैं। मौसम इस शहर की पहचान है। यहाँ एयर कूलर नहीं मिलते। इस शहर में प्रवेश करते ही जो पहली बात आपका ध्यान खींचती है वह है शहर का तापमान। मनुष्यों ने हालांकि यहाँ की आबोहवा को नष्ट करने की भरपूर कोशिश की है और उथली सफलताओं से उन्हें बल भी मिला है, लेकिन बर्बादी की तरफ बढ़ने के बावजूद प्रकृति अब भी इस शहर पर मेहरबान है। रातें हल्की खुनक लिए होती हैं। जो इस शहर के पुराने बाशिंदे हैं वे बारहों मास सुबह की सैर में कान बांधे हुए मिलेंगे। पार्क और बागों में अधेड़ और बुजुर्गियत की तरफ बढ़ती स्त्रियां साड़ी पर स्कार्फ और महंगे जूते बांधे सैर करती दिखती हैं। पुराने बेंगलोरियंस मकर संक्रांति के बाद एक दिन स्वेटर पहने हुए दिखते हैं, मानो यह कोई रस्म हो। चंडीगढ़ की कृत्रिमता को परे रख दें तो भारत में शायद ही किसी शहर के मोहल्ले या कॉलोनी इतने करीने से बसे हों। यह शहर रंगोली की नींद उठता है और स्विगी की नींद सोता है। स्विगी, जोमैटो और ऊबर ईट्स के बाइकर्स यहाँ रात के नज़ारों को बहुत दूर तक बदल चुके हैं। ये लोग खाना आप तक इतने प्यार से लेकर आते हैं जितने प्यार से आपने शायद खुद को भी कभी न परोसा हो। कर्नाटक बड़े भूभाग वाला राज्य है, इसके बावजूद 1.5 करोड़ की आबादी बेंगलुरु में रहती है, यानी अकेले इस शहर में राज्य के 20% लोग रहते हैं। भारत के हर राज्य से लोग यहाँ ठीक ठाक संख्या में हैं। बेंगलुरु सच्चे अर्थों में कॉस्मोपॉलिटन है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई में रहकर जो ठसक स्थानीय लोगों के बीच से उभरती है वह यहाँ नहीं है। इस शहर को सबने मिलकर बनाया है, यह बात बेंगलुरु को याद रहती है। इस शहर के विनम्र होने का रहस्य शायद इसी कृतज्ञता में छुपा है। सेवा क्षेत्र, निर्माण, प्रबंधन, अनुसंधान, आईटी इंडस्ट्री, कला आदि के क्षेत्रों में लगे लोगों ने इस शहर को देश का छोटा प्रतिरूप बना दिया है। बाकी क्षेत्रों के बारे में आपको पता होगा, लेकिन सेवा के क्षेत्र दिलचस्प है। घरों में खाना बनाने का काम करने वाले अधिकतर ओडिशा से हैं, होटलों में खाना बनाने वाले ज़्यादातर उत्तर पूर्व या केरल से, गली कूचे मैदानों में बनते मकानों इमारतों में लगे मजदूर पूर्वी और उत्तर भारत से हैं, घरों में साफ सफाई का काम करने वालियाँ ज़्यादातर नज़दीक के जिलों से हैं जो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में हैं। शहर के अमीरों में वही हैं जो पहले से सूची में रहते आए हैं, इनके बारे में क्या बताना। बेंगलुरु में मकान मालिक और किराएदार के बीच जाड़े की धूप जैसा रिश्ता है। कभी कभार तिड़क जाए तो कह नहीं सकते, वरना मकान मालिक अपने किराएदारों को हर संभव सहयोग करते हैं। ओढ़ी हुई नैतिकताओं के लिए इस शहर में जगह ज़रा कम है, यहाँ उसे तंग नजरी माना जाता है। प्यार अगर इस शहर की सिल्विया है जिसे लोग ढूंढते फिरते हैं तो वह तलाश अब बड़ी तादाद में टिंडर पर है। इस शहर के लोगों के मन में रोमांस देखते हुए कुछ दृश्यों को दोहराने का कार्यक्रम जैसा है। पैसा पाते ही लोग इन देखे हुए को जीना चाहते हैं, जब इस जीने से थक जाते हैं तो जीवन में वापस लौट आते हैं दोबारा कुछ दृश्यों को रचने और जीने के इंतज़ाम के लिए। खान पान का शौक नए बेंगलुरियंस की पहचान है। यूँ तो समूचा दक्षिण भारत ही अपने व्यंजनों के लिए मशहूर है, लेकिन बेंगलुरु उनमें भी खास है। यह विशिष्टता कुछ इस तरह की है कि जहाँ पुरानी दुकानों और होटलों ने पुराने स्वाद को बरकरार रखा है, वहीं नए आउटलेट्स भी पूरी तरह से स्वाद और स्वास्थ्य को समर्पित हैं। मसलन विद्यार्थी भवन का बन्ने डोसा और वहाँ की व्यवस्था। 77 बरस पुराने इस होटल ने आज तक वही स्वाद कैसे बरकरार रखा होगा, इस पर ताजुब भी किया जा सकता है। बन्ने डोसा यहाँ चित्रदुर्गा से आया है। इसके उलट नया नवेला ताज़ा थिंडी है, जिसने डोसे को उसके पारंपरिक रूप में परोसने का जिम्मा लिया है, जिसमें डोसे के साथ चटनी भर है, सांभर नहीं। नीर डोसा के लिए जहां मयाज है, वहीं इडली और सिर्फ इडली बनाने वाले शंकर मठ के पास वाले ब्राह्मिन्स कॉफ़ी एंड बार का स्वाद का कोई मुकाबला नहीं दिखता। दूसरा एक ट्रेंड भी दिखने लगा है, जिसमें हम पाते हैं कि जो भी चर्चित इलाके हैं वहाँ घरों से अधिक रेस्तरां खुल गए हैं। उस ट्रेंड के भीतर का ट्रेंड यह है कि 70% नए रेस्तरां एक बरस के भीतर बंद हो जाते हैं। यह शहर स्टार्टअप्स के जलवों को भुनाना सीख चुका है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर के बिखरने को बयान करना अभी सीख रहा है। आईटी कंपनियों में काम करने वाले वे नवयुवक जो स्वप्नशील हैं, मेधावी हैं, जो सुदूर देहात से निकलकर जीवन को सफल बनाने का रास्ता देख रहे हैं, उन्हें कुछ वर्षों के लिए विदेश जाने का मौका मिलता है, तब कुछ पूंजी जमा कर पाते हैं। वापस देश लौटकर वे पूंजी किसी व्यवसाय में लगाकर कुछ अपना उद्यम खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन बिचौलिए उनके सपनों को घुन की तरह चाल देते हैं। ऐसे युवकों की एक बड़ी तादाद बेंगलुरु में है और लगातार बढ़ रही है। रोजगार के अचूक अवसरों ने इस शहर की शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। आईआईटी का अब भी यहाँ कोई क्रेज नहीं है, हालांकि कुछ संस्थान अपने विज्ञापनों के शोर से यह बताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। उत्तर भारत से आए युवकों के लिए किसी आश्चर्य की पुड़िया की तरह होता है, यहाँ के लोग हर तरह के इंजीनियर को इंजीनियर ही कहते हैं और आईआईटी नाम का कोई अलग से ब्रैकेट नहीं है। बच्चे 12वीं की परीक्षा के बाद कोचिंग के नाम पर एक साल बर्बाद करने में यकीन नहीं करते। इस शहर में दूरियां बहुत है, शहर की बनावट टापुओं जैसी है, मौसम आराम तलवी वाला है और नौकरी की कारस्तानियां दूरियों को हमेशा बढ़ाए हुए रखती है। यह शहर स्वप्न सरीखा हो सकता था। स्वप्न के शहर और बेंगलुरु में अगर कोई रुकावट है तो वह है ट्रैफिक का जाम। लोग यहाँ ऊँची इमारतों को बनता देख पहला ख्याल मन में यही लाते हैं कि जब यह सोसाइटी बनकर तैयार हो जाएगी और लोग रहने लगेंगे तो हर सुबह सामने की पतली सड़क पर कितनी कारें निकला करेंगी।